بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب دجال 3 جس کے مصنف ہیں مفتی ابو لبابا شاہ منصور آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے رابطہ کریں ہمارے نمبر 03212138255 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kirtiba.org پر www.qurtaba.org پر. اب ہم سنیں گے اس بک کا پارٹ 12. اسرائیلی قاتل اسکالڈ اور غیر ملکی میڈیا. اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ کس طرح اسرائیلی حکومت بیرونی میڈیا اور صحافیوں سے معاملہ کرتی ہے, خاص طور سے اس خصوصی یونٹ جس کا مقصد چھوٹی اور بڑی مچھلیوں کو قتل کرنا ہے. انتقافاسا کے آغاز ہی سے اسرائیلیوں نے زیر زمین خصوصی دشتے تشکیل دیے جن کا مقصد ہی ان لوگوں کا خاتمہ کرنا تھا جن کو وہ خطرہ سمجھتے تھے. فلسطین انسانی حقوق کے مرکز PHRC, فلسطین ہیومن رائٹس سینٹر اور ایلا زوریل جو کہ کوئنز یونیورسٹی میں سوشیولوجی کی پروفیسر ہے کے مطابق 1988 سے 75 فلسطینی باشندوں کو انہیں زیر زمین دستوں نے مارا. ان خصوصی دستوں کے اہلکار عربوں کی ہی طرح لباس پہنتے ہیں اور اپنے فریب دینے والے حلیے کی وجہ سے بے گناہ شکاروں کی طرف اطمینان سے جاتے ہیں اور قریب پہنچ کر مشین گن کی گولیاں برساتے. جب عسکری ترجمان سے بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 1991 میں جن 29 لوگوں کو شہید کیا گیا ان میں سے صرف 7 کے پاس پستول یا محض چھریاں تھیں, جن کو مستاریم یعنی عرب بیس میں موجود اہلکاروں نے شہید کیا. ان میں سے بھی صرف 3 نے کسی قسم کی مزاحمت کی. آدھے سے زیادہ افراد ایسے تھے جن کی عمریں 20 سال سے بھی کم تھیں. یہ خصوصی دستے اسرائیلی جوابی کارروائیوں کے لازمی جز بن گئے تھے. یہ وزیر دفاع اسحاق روبن کے زیر نگرانی تھے جو کہ بعد میں اسرائیل کا وزیر اعظم منتخب ہوا. اگرچہ اسرائیلی زیر قبضہ علاقوں میں انہی خصوصی دستوں کے وجود کا اقرار ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ موت کے دستے ڈیتھ اسکواڈ نہیں, بلکہ ان کو اس لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی آبادی کے اندر گھس کر تشدد اور انتہا پسند عناصر کو پکڑ سکے جو کہ انتقاسا کی حمایت کر رہے ہیں. فوج نے تو اس طرح کی فلمیں بھی بنائی ہوئی تھیں تاکہ عوام کو دکھایا جائے کہ یہ زیر زمین دستے کس طرح گھات لگا کر گرفتاریاں کرتے ہیں اور اپنی مہارت اور لگن کے ساتھ ان دہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں. اس فلم میں کہیں یہ نہیں دکھایا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں کا یہ سنگدل دستہ بے گناہ فلسطینیوں کو کس طرح بے دردی سے قتل کرتا ہے. غیر ملکی میڈیا اور انسانی حقوق کے گروپوں نے اس کے بالکل برعکس نقشہ پیش کیا جو کہ اسرائیلی فوج کے پروپیگنڈے کو پاش پاش کر دیتا ہے. انہوں نے تو کئی سیاسی قتل اور زیر زمین دستوں کی کارروائیاں بھی دکھائیں. CBS TV کو مجبور کیا گیا کہ وہ ٹیپ کو تباہ کر دے جس میں فوجیوں کو حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا. یہ 1988 کا واقعہ ہے یعنی سرکاری سطح پر اقرار بھی 3 سال قبل کا. ایک اور موضوع پر 1988 میں 3 صحافیوں کو رائٹرز اور فائنینشل ٹائمز سے معطل کر دیا گیا جبکہ انہوں نے اس رپورٹ کی اشاعت کی خصوصی دستے کیا ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق روبن نے ان تمام الزامات کا اقرار کیا اور انہیں مکمل بیکار کہہ کر مسترد کر دیا. اگرچہ ان 3 صحافیوں کو بحال کر دیا گیا تھا لیکن رائٹرز کا صحافی سٹیو وائزمن اس وقت بال بال بچا جب ایک دھماکہ خیز مواد نے اس کی گاڑی کو تباہ کر دیا اور فائنینشل ٹائمز کے نامہ نگار اینڈری وائٹلی پر حملہ کیا گیا اور ایک نامعلوم حملہ آور کے ذریعے اس کی پٹائی لگوائی گئی. یہ افسوسناک واقعہ یروشلم میں اس لمحے سے کچھ دیر قبل پیش آیا جب اس نے اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی. اس حقیقت کی زیر زمین دستے در حقیقت قتل کے دستے ہیں, ڈیتھ اسکواڈ ہوتے ہیں, تصدیق کے کئی ذرائع سے ہو چکی ہے جن میں خود اسرائیلی میڈیا بھی شامل ہے. جیسا کہ ڈینی رابرٹسن نے 25 جنوری 1922 کے شمارے میں اسرائیلی اخبار ہیتھرے نے ذکر کیا. اس آرٹیکل میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک نوجوان محمد عابد کو محض شک کی بنا پر مار دیا, حالانکہ وہ عسکری آدمی نہیں تھا. اسرائیلی مصنف مایا روسفیلڈ نے خود 1989-90 کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں کیے گئے 18 سیاسی قتل گنوائے. یہ رپورٹ اس نے ایسوسیشن آف ٹریل رائٹس ان اسرائیل کے لیے بنائی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جنوری 1990 میں اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا کہ فلسطین میں سیاسی قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس رپورٹ میں یہاں تک لکھا ہوا تھا, پچھلے چند سالوں میں اسرائیلی حکومت نے انتہائی مہارت سے ماورائے عدالت قتل کی مذمت بھی کی اور ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی, خاص طور سے افواج کے ذریعے قتل کی تاکہ وہ انتقاسات کے دوران پھیلی ہوئی خراب صورتحال کو قابو کر سکے. 1991 میں ملکی رپورٹ میں بھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسرائیل پر اپنی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی. ایمنسٹی انٹرنیشنل پی ایچ آر آئی سی نے یہ بات صحیح طور پر بیان کی ہے کہ 27 ایسے فلسطینیوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا گیا جن میں سے زیادہ تر غیر مسلح افراد تھے, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی روایتی دوغے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ یہ اموات اس لیے صحیح تھیں کہ ان میں سے زیادہ تر افراد مطلوب تھے, چھپے ہوئے تھے یا پھر دیواروں پر نعرے لکھنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. امریکی اور اسرائیلی اتھارٹیز کے درمیان گہرے روابط کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو اس بیان کی حقیقت کو سمجھنا مشکل نہیں. اسرائیل کی ترقی یافتہ معیشت یا عربوں کے قابل رحم حالات. میں نے مغربی کنارے میں موجود مسلم آبادی میں افلاس غربت کو دیکھا اور دوسری طرف اسرائیل کی ترقی اور دولت کو دیکھا. اسرائیلیوں کو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر کے مالدار سہوانیوں کی ہمدردی اور ان کے خزانوں تک رسائی حاصل ہے, اگرچہ جدید سہوانی ریاست اس زمین میں موجود ہے جہاں ہزاروں سال کی ثقافت اور تہذیب موجود تھی, لیکن زیادہ تر انفراسٹرکچر پچھلی 2 سے 3 دہائیوں میں قائم کیا گیا. اس بات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کہ دلکش اور پرکشش عمارات تعمیر کی جائیں اور جدید سڑکوں کا جال بچھایا جائے, جب چنانچہ چوڑی چوڑی سڑکیں تعمیر کی گئیں جن کے دونوں اطراف پیسے کی ریل پیل نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ان پر موجودہ دور کی تمام آسائشیں موجود تھیں جن میں نائٹ کلبز, ڈسکو ہال, شاپنگ مالز اور سامان سے بھرے ہوئے اسٹور اور ریسٹورینٹس شامل ہیں. فلسطینی آبادی میں اس کے بالکل برعکس صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. زیادہ تر کچی سڑکیں, ان پر چلنے میں جھٹکے لگتے ہیں, زیادہ تر ٹوٹی پھوٹی عمارتیں. جو لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس مکانات ہیں, ان کو بھی جدید دور کی ضرورتوں کی کمی ہے یا پھر وہ سرے سے موجود ہی نہیں. تمام اسکول اتنے کم فنڈ رکھتے ہیں کہ شاگرد اور معلم دونوں جدید تعلیمی مواد اور ساز و سامان جیسے کمپیوٹر, آڈیو ویژولز وغیرہ کی سہولتوں سے محروم ہیں. اس کے علاوہ یہ علاقہ بھی اتنا اچھا نہیں کیونکہ یہاں پر خشک اور پتھریلی زمین ہے اور کاشتکاری وغیرہ کے لیے قابل استعمال نہیں. البتہ درخت ضرور اگتے ہیں, زیتون یہاں کی اصل پیداوار ہے. ایک بڑا انسانی المیہ ہے کہ 15 لاکھ افراد پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں جن میں سے چند کا خود میں نے دورہ کیا. ان کیمپس کی صورتحال بھی انتہائی بری ہے اور اس کو تیسری دنیا سے ہی تشبیہ دی جا سکتی ہے. غزہ کی مثال تو ایک کھلے زخم کی طرح ہے جو مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر دن اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے. یہاں کے گھر کم و بیش کھنڈر ہیں, سڑکیں کچی ہیں, سیویج کا نظام موجود ہی نہیں, انسانی فضلہ گڑوں میں پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں عام ہیں. ये कैंप जिनकी निगरानी और देखभाल अक्वामे मुत्तहिदा की एक तंजीम यूएन वारा UNWRA करती है, इसको भी बहुत कम फंड्स दस्तियाब हैं, तिबी सहूलतें नाकाफी हैं, बेरोजगारी हर जगह आम है, यहाँ कोई कारखाना नहीं और कोई जॉब्स नहीं, यहाँ जबकि इनमें से बहुत से अफराद इसराइल में रोजगार हासिल नहीं कर सकते। इसका नतीजा ये है कि यहाँ के लोग खतरनाक हद तक गुर्बत और अफलास का शिकार हैं, बहुत से अफराद गजाई किल्लत का शिकार हैं, यहाँ किसी किस्म के तिबी या माशरती सहूलतें नहीं, ना तिबी इंश्योरेंस जैसे मंसूबे जो कि ज़रूरत के वक्त इनकी पहुँच में हो। तकरीबन तमाम पनाह गुजीनों को एक तंग सी जगह में जमा करके रख दिया गया है के 7 से 10 या फिर इससे भी ज़्यादा अफराद एक कमरे में रहते हैं। इसके अलावा इन पनाह गुजीनों के खिलाफ इज्तमाही सजाओं, घरों पर सील लगाना, स्कूलों की बंदिश जैसे हरबों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर तलकरम के पनाह गुजीन कैंपों में 1989 के तालीमी साल में स्कूल से 45 दिन खुले रहे, 1990 में सिर्फ 36 दिन खुले रहे। डॉक्टर साबित जो एक फलस्तीनी दंदांत साज डेंटिस्ट है और तलकरम के पनाह गुजीन कैंप का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, इसने बताया कि इसराइली फौजियों के मजालिम और इतनी ज़्यादा गुंजान आबादी की वजह से ये कैंप बिटरनेस और फ्रस्ट्रेशन के गढ़ बन गए हैं। यहाँ तशद्दुद बहुत आम है जो कि चुटी शख्सियत और नफरत पसंदाना माहौल तश्कील देता है। ये सारे मौरूजी हकाइक इस तरफ इशारा करते हैं कि फलस्तीनी वाज़ह तौर से एक अलग रियासत चाहते हैं ताकि वो अपनी मईशियत बेहतर बना सके, इंडस्ट्री, कमर्शियल और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर सके। वो इसके लिए तैयार और मुस्तैद हैं, वो इसकी अहलियत भी रखते हैं, वो ऐसा चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये कि वो एक कौम की हैसियत से जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। इसके बावजूद वो जानते हैं कि इसराइलियों ने अपनी ताकत, इस्तताअत और इनकी दस तरफ में जो कुछ भी था वो इस्तेमाल कर लिया है ताकि जुल्म के जरिए फलस्तीनी को दबाया जा सके या इनको पीछे रखा जा सके। फलस्तीनी अवाम अरब ममालिक बिलखसूस मशरक वस्ता में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता है। एक अमरीकी इंजीनियर जो कि कुवैत में काम कर रहा है, जब इससे मेरी मुलाकात लंदन के फ्लाइट में हुई तो इसने भी इस बात की तहकीक की कि खलीज की जंग से पहले सारा कुवैत का बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर फलस्तीन के तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद पर तकिया करता था। कुवैती बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो फलस्तीनी मैनेजमेंट और अफरादी कुवत को इस्तेमाल करते हैं। ये बात कुछ हद तक उड़न के लिए भी सही है। यहाँ 15 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मुहाजरीन रहते हैं, बल्कि फलस्तीनी दुनिया भर में रह रहे हैं। कानूनदान, डॉक्टर, ताजिर वगैरह जैसे मुअज्जिज़ पेशेवर अफराद के तौर पर काम कर रहे हैं। वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वो वापस लौट कर अपने मुल्क को संभालना शुरू कर दें, अपने मुल्क की तामीर नौ करें। ज़्यादातर सियासी कैदी जिनसे मेरी मुलाकात हुई रवानी से इबरानी, अरबी और अंग्रेजी बोलते हैं और तकरीबन तमाम ने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अदब और इज्जत से पेश आते थे। कई बार मैंने इनके साथ बैठ कर खाना खाया और रात में भी इनके साथ क़याम किया। ये लोग मुझसे अक्सर इस बात का सवाल करते कि इन्हें कब आज़ादी से रहने का मौका मिलेगा, वो भी अपने मुल्क में। मैं समझता हूँ कि इन्हें यह हक मिलना चाहिए। ये वो वक्त है कि दुनिया इस मौजू पर गौर करे और सहवानियत को देखे कि वो कैसी क़ुव्वत बन चुकी है। साबिक फलस्तीनी कैदियों से बातचीत। समीरा बोशिमस मगरबी किनारे में मेरी सबसे पहली मंजिल तलकरम थी, इसराइली अस्करी जेलों में सबसे खतरनाक जगह। टैक्सी के अड्डे से मुझे सीधा एक आदमी समीर अबू शम्स के घर ले गया। अगस्त 1990 में इसे उर्दन की सरहद पर इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो इसे पार करने वाला था। इस पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो PLO का मेंबर है, जो वो कभी नहीं था। मैं इसी वक्त इस पर एतमाद करने को तैयार हो गया कि जिन लोगों से मैंने अब तक बातचीत की थी उन्होंने या तो अपना नाम जाहिर ना करने की दरख्वास्त की या फिर इस बात का खुलकर इतराफ किया कि वो PLO के मेंबर थे या अब भी हैं। इसराइली तफ्तीशी अफसरों ने जब इससे पूछा तो इसने इस बात का इतराफ किया कि वो पीएलओ का हिमायती तो है, लेकिन इसने ये बात भी साफ साफ बताई कि वो कभी इस तंजीम का हिस्सा नहीं रहा, इस तंजीम में कभी अंदर नहीं गया। सनीर को बाद में एक इसराइली जेल में ले जाया गया जिसमें इसको 1 मीटर ऊंचे और 1.8 मीटर चौड़े पिंजरे में कैद कर दिया गया। इसे इस हालत में 3 दिन तक रखा गया। इस पिंजरे में ना तो कोई खिड़की थी ना ही बैतुल खला, इसे मजबूर होकर इसी पिंजरे में रफाए हाजत करनी पड़ती। इसके 3 दिन बाद इसे एक और पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया जिसमें इसे 2 और साथियों की रफाकत की सहूलत मिल गई। इसका नया पिंजरा 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा था। हर सुबह समीर को इस छोटी सी जगह से निकाल कर पूछ गछ के लिए लाया जाता। इस दौरान इसे कई सवाल किए जाते, इसके खानदान के बारे में और पीएलओ के मेंबर्स के बारे में। जाहिर सी बात है समीर कुछ भी नहीं बता सकता था क्योंकि वो कभी पीएलओ का रुकन नहीं रहा था। हर सुबह पूछ गछ के लिए इसको ले जाया जाता और लाठियों से पिटाई की जाती। इंसानियत से आरी इसराइली तफ्तीश कारों का एक पसंदीदा तरीका ये होता कि कुर्सी में इसके हाथ पांव बांध कर बालों से इसे पीछे खींचते और जिससे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ होती। इसके अलावा इसराइली बहुत ज्यादा तंज और मजाक का निशाना बनाते जबकि रात में भी शोर मचाते ताकि इसे सोने ना दिया जाए। इसको अक्सर जनाब सदर कह के पुकारा जाता और आईने में अपनी शक्ल दिखाई जाती ताकि जिसके बाद इसे रिहाई का झांसा देकर एक बार जुर्म करने को कहा जाता। एक मरतबा तो समीर को टॉर्चर करने वाले इसराइली अफसरों ने इसका मुंह खोला और इसमें थूक दिया। इसके 15 दिन बाद इसको एक वकील से मिलने दिया गया लेकिन जैसे ही अदालत किया तो इसके खिलाफ 30 दिन का रिमांड दे दिया गया। हालांकि इसके खिलाफ एक रत्ती बराबर भी सबूत न था ताकि इस तगासा को अपना काम जारी रखने दिया जाए। अदालत की इस तारीख के बाद तो इसको एक अलग पिंजरे में डाल दिया गया जहां इसकी गर्दन के गिर्द जंजीर बांध दी गई। फिर इस जंजीर को छत से बांध दिया गया। इस हालत में इसे 3 दिन तक खड़ा रहने पर मजबूर किया गया। अगर वो जरा सा भी झुकने या बैठने की कोशिश करता तो गले में फंदा और सख्त हो जाता, इसका दम घुटने लगता। जाहिर सी बात है अगर वो गिर जाता तो इसकी मौत वाकई हो जाती। इसने मुझे बताया कि वो सिर्फ इस वजह से बच गया कि वो और इसके इर्द गिर्द के कैदी मिलकर बातें करते या फिर नजरें पड़ते रहते ताकि इस दौरान वो सोने ना पाए। अगर वो इस हालत में सो जाते तो ये इनकी नींद इनके ये मौत की आखिरी थपकी साबित होती। इस खौफनाक वाकये के बाद इसे एक सर्द पिंजरे में डाल दिया गया जहाँ वो जल्द बीमार हो गया और इसकी अपनी आवाज खो गई। इसके कुछ अरसे बाद इसे जिनेन की एक जेल भेज दिया गया और इसे फलस्तीनी अमले के साथ रखा गया ताकि जिस हद तक हो सके मालूमात इकट्ठी की जा सके। समीर और जेल में इसके मौजूद फलस्तीनी साथी ये जानते थे कि ये फलस्तीनी इसराइलियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए ये इनका सामना नहीं करते थे। इसी दौरान इन लोगों का साथी कैदी सख्त बीमार हो गया और समीर और इसके दोस्तों को भूख हड़ताल करना पड़ी ताकि इसके दोस्त को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सके। समीर को बिलाखिर 3 महीने बाद जेल से रहा कर दिया गया। इसको कभी ये नहीं बताया गया कि इसे अचानक क्यों इतनी जल्दी रहा कर दिया गया लेकिन एक तफ्तीशी अफसर ने इसे इतना जरूर बताया था कि इसे इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो दौरान तालीम जर्नल यूनियन ऑफ फलस्तीन स्टूडेंट्स से वाबस्ता रहा है। हालांकि समीर कभी भी इस तंजीम का रुकन नहीं था बल्कि सिर्फ इसने एक तारुफी तकरीब में शिरकत की थी जो बज़ाहिर इस बात के लिए काफी था कि इसराइली इस वाकये के 8 साल बाद इसे इस जुर्म पर हिरासत में ले लें। खालिद राशदी को 1985 में गिरफ्तार किया गया जब इस पर पीएलओ का रुकन होने का इल्जाम लगाया गया। खालिद ने साफ इतराफ किया कि वो इस वक्त पीएलओ का कारकुन था लेकिन वो जेल से बाहर आने के बाद दोबारा इस तंजीम में शामिल नहीं हुआ। तकरीबन 2.5 साल बाद जब इसे जेल से रिहाई मिली तो 45 दिन की आज़ादी के बाद इसे दोबारा मार्च 1988 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसे 4 महीने बाद अदालत ले जाया गया जहाँ अगरचे इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं था लेकिन जज ने इसे मजीद पूछ गछ के लिए महीने कैद में रखने की मंजूरी दे दी ताकि इसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए जा सके। इस गर्ज से इसे नाबलूस की मरकजी जेल भेज दिया गया। इसे 11 महीने बाद अपने वकील से मिलने की इजाजत दी गई और लिया सिनेल इसराइली सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी से इसकी दरख्वास्त पेश की गई और इसे कैद से रहाई मिल गई। लेकिन 1984 में इसे एक मरतबा फिर बगैर कोई इल्जाम लगाए जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान खालिद का केस तमरा टेलिक की नजर से गुजरा, जो कि इसराइल की इंसानी हकूक की मुतहरिक तंजीमों में की एक रुकन थी। इसने एक साल बाद ही 1990 में इसको रिहाई दिलवाई। दौरान कैद खालिद को बहुत से तिबी मसाइल का शिकार होना पड़ा, जिनमें इसकी बड़ी आंत में इन्फेक्शन और मेदे से खून का इखराज शामिल है। लेकिन इसके बावजूद इसको कोई तिबी इमदाद नहीं दी गई। इसराइली मोटे डंडों से बार बार इसकी पिटाई करते और सवाल करते। एक मरतबा इसराइली तफ्तीशकार ने जब इसे एक हसास सिक्योरिटी जोन ले जाया जा रहा था तो ना सिर्फ इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी बल्कि इसके सर पर जो कपड़ा डाला गया इसे मजबूर किया गया कि वो इस पर पेशाब करे और इसको अपने मुंह पर डाल दे ताकि वो इसे सूंघ भी ना सके कि इसे किस जगह ले जाया जा रहा है। अपनी कैद के पहले दौरानिए के बाद खालिद को एक शनाख्ती कार्ड दिया गया जिसको ग्रीन कार्ड कहा जाता है। इसका मतलब या मकसद ये होता है कि ये शख्स मगरबी किनारे से बाहर नहीं जा सकता ताकि वो कोई रोजगार तलाश न कर सके और अपने खानदान वालों की किफालत न कर सके, हत्ता कि वो यरूशलम के शहर में भी दाखिल नहीं हो सकता। ये लोग अक्सर इसराइली इंतजामिया के खौफ में रहते हैं और इन्हें अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है और पिटाई लगाई जाती है। सादुद्दीन हारिब दौरान कैद इसके मुंह पर कीड़े मार दवाई डीडीटी छिड़क दी गई और आंखों पर भी मुंह पर मास्क लगाकर 3 दिन तक इसकी पिटाई की गई। खास तौर पर सर और शर्मगाह में और कई दिन तक इसे भूखा रखा गया और इसके अलावा इसके हाथ कुर्सी से बांधकर कई दिनों तक कैद में रखा गया, 22 दिन तक। इस दौरान इसके हाथों को इस कदर सख्ती से कसा गया कि आज तक इसकी कलाइयां के आगे के हिस्से मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। नाजी एक फलस्तीनी तालिबे इल्म जिसका नाम नाजी है, इसे जब नाबलूस से यरूशलम जाते हुए मुलाकात की तो इसने मुझे बताया कि इसको 4 मुख्तलिफ वाकयात के दौरान गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो अक्सर बेरजीत यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहा होता था जब इसराइली पुलिस वहां छापा मार रही होती थी। नाजी कुछ ही अरसे पहले 17 साल का हुआ जब मेरी इससे मुलाकात हुई। अहमद जाबिर मोहम्मद इब्राहिम एक और तालिबे इल्म अहमद जाबिर मोहम्मद इब्राहिम जो कि 17 साल का था, इसको फौजियों ने गोली मार कर हलाक कर दिया। इस वक्त वो एक पुरअमन मुजाहरा करने वालों में शामिल था, वो भी सानवी तालिबे इल्मों का एक मुजाहरा जो कि 1 मार्च 1992 को हो रहा था। रफा के शहर में नासिर नामी अस्पताल के तिब्बी रिकॉर्ड से इस मुजाहरे में 14 तालिबे इल्मों को गोलियों से जख्मी होने के बाद इलाज किया गया। इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट ने इस मौके पर बताया कि एक हलाक और 9 जख्मी हुए और साथ ये भी लिखा गया एक मुसल्ला तसादुम हमास की बुनियाद परस्तों और पीएलओ के दरमियान जारी है। इन दोनों को रोकने के लिए इसराइली आर्मी दरमियान में कूदी ताकि मजीद खुरेजी को रोका जा सके। क्या खूबसूरत उज्र है और झूठ बोलने की सलाहियत, कितना जबरदस्त मुजाहरा किया गया है झूठ बोलने का। जमाल हसन सबसे बदतरीन तशद्दुद जो कि इसराइली फौज इस्तेमाल करती है वो है बिजली से टॉर्चर देने का तरीका। एक 14 साल का लड़का जिसका नाम जमाल हसन था जिससे मैंने बात की थी, इसको इसके वालदैन के घर से हबरून के अस्करी कसरे सदारत मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ले जाया गया। इस दौरान दीगर कैदियों की सख्त अजियतनाक आवाज़ों से खुश आमदीद कहा, इसको बरहाना होने पर मजबूर कर दिया गया। इस चीज का एक वाले जुर्म करने को कहा गया कि इसने इसराइली फौजियों पर पत्थर फेंका। जमाल ने मुझे बताया अगरचे इसने दीवारों पर नारे लिखे लेकिन कभी इसराइली फौजियों पर पत्थर नहीं फेंके क्योंकि इसे मालूम था कि अगर वो इस तरह से इनका सामना करेगा तो उसे गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। शुरू में तो इसराइली पूछताछ करने वाले अफसरों ने इसे धमकियों की हद तक महदूद रखा। वो छुरी की धार को इसके गले पर रख देते और इसके सर के पीछे दीवार पर मोटे डंडे से पीटते। उन्होंने इसे खसी करने और इसकी बहन को गिरफ्तार करने की भी धमकी दी और ये कहा कि इसराइली फौजी इसकी असमत दरी करेंगे। जमाल ने इकबाल जुर्म करने से साफ इनकार कर दिया और खौफ से इसने किसी भी धमकी का जवाब नहीं दिया। इस पर इससे पूछताछ करने वालों ने और भी ज्यादा बिफर गए और इससे इकबाल जुर्म करवाने के लिए उन्होंने इसके बाजुओं और टांगों पर बिजली के तार लगाए और बिजली के झटके दिए। वो कांप उठा और ठटरना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि बिजली का वोल्टेज इतना ज्यादा हो गया कि वह कुर्सी से उछल गया। इसको कुर्सी से नहीं बांधा गया था ताकि बिजली के ताकतवर तरीन झटके दिए जा सके। इस दौरान इसराइली फौजी कह कह लगाते रहे, इसकी नकल उतारते रहे, जबकि इसको अपने लोगों का हीरो कहा जा रहा था। इसके बाद इसके सर पर गंदगी का बदबूदार थैला बांध दिया गया जिससे इसका दम घुटने लगा। बिजली के झटकों के दौर दूसरे सिलसिले जो कि इसकी शर्मगाह में दिए गए थे, न सिर्फ को बेपनाह तकलीफ हुई बल्कि तकलीफ की टी से उठती रही, दर्द के दौरे पड़ते रहे। इसी दौरान इसके सर पर कई वार किए गए जिससे वो होशोहवास खो बैठा। जब इसे होश आया तो इसे देखा कि एक फलस्तीनी कमरे में दाखिल हुआ है। इसने इसराइलियों को बताया कि इसने जमाल को इसराइली फौजियों पर कई मौके पर पत्थर फेंकते हुए देखा था। जमाल ने इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इसने इस फलस्तीनी के मुंह पे थूक दिया जो कि हकीकत में इसराइलियों का एजेंट था। इसराइलियों ने इसको बिजली का मजीद झटके दिए। इसको बार बार इस बात पर मजबूर किया गया कि वो बिजली के तारों को अपने हाथों में पकड़े जिससे इसके बदन और बाजुओं में बिजली के झटके लगे। दोबारा एक बार जुर्म करने को कहा गया लेकिन अब वो बोलने की सकत नहीं रखता था। इसने सिर्फ अपना सर हिलाया। एक और एजेंट को लाया गया। इसने भी यही कहा कि इसने जमाल को पत्थर फेंकते हुए देखा है और ये कि वो जमाल को जानता है, इसके खानदान को भी, और ये कहता रहा। पूछताछ करने वालों ने मजीद कहा कि इनके पास एक दर्जन से भी ज्यादा ऐसे अफराद और ऐसे ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, इसलिए बेहतर यही है कि वो एक बार जुर्म कर ले। लेकिन इसके बावजूद भी इसने एक बार जुर्म करने से इनकार कर दिया तो राइफल के बट इसके बाजुओं और पाओं पर शदीद जर्ब लगाई गई। इसके बाद इसको बिजली के झटके दिए गए जिससे जाहिर सी बात है तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई। इस तरह एक हफ्ते तक इसे कैद रखा गया जालिमाना तशद्दुद के बावजूद। वो अगले 9 दिनों तक चल नहीं सका। इसका सारा जिस्म आबलों से भर गया। इसे मालूम था कि शायद इसकी एक पसली भी टूट गई है। इसके अलावा खाल पर जगह जगह जलने के निशानात मौजूद थे। इसके बाद एक इसराइली डॉक्टर ने इससे पूछा क्या वो ठीक है, तो इसने जवाब दिया ठीक है, क्योंकि इसके साथी कैदियों ने इसे बताया था कि डॉक्टर्स सिर्फ इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि जिस्म के कमजोर हिस्से का पता लगाया जा सके ताकि इस पर मजीद तशद्दुद किया जा सके और पूछताछ के दौरान को मजीद अजियतनाक बनाया जा सके। तफ्तीश के अगले मरहले में सिगरेट के जरिए इसकी खाल और आंख के पर्दे को दागा गया, लेकिन इसके बावजूद इकबाल ने जुर्म से इसने इनकार कर दिया। तब दोबारा इसके चेहरों और टांगों पर डंडों की बेतहाशा पिटाई की गई। बिलाखिर तफ्तीशकार इस बात पर मजबूर हो गए कि रिवायती धोखेबाजी से काम ले ताकि तहरीरी बयान पर इसके दस्तखत लिए जा सके। इसने इसराइली फौजियों पर पथराव किया था लेकिन ये बयान इब्रानी जबान में था जो जमाल पढ़ नहीं सकता था। जैसे ही इसने इस तहरीरी बयान पर दस्तखत किए, इसराइली खुशी से चीखने लगे और जबरदस्ती इसके अंगूठे के निशानात लिए गए। इसके बाद इसे अदालत में ले जाया गया जहाँ इस्तगासा ने जज को इस हलफनामे की बिना पर कायल कर लिया कि इसको मजीद 2 महीने तक कैद में रखा जाए। इसके 1 महीने बाद इसे कैद से निकाल दिया गया लेकिन इसके खानदान पर 1500 शेकेल का जुर्माना आयद कर दिया गया। जमाल आज तक अपने हाथों का इस्तेमाल दोबारा कभी पूरी तरह नहीं कर सका, ना ही टांगों का। अब भी अक्सर दर्द और तकलीफ की टीसें इसके बाजुओं और पाओं में उठती रहती हैं जो कि इसको मुस्तकिल तौर से इन बिजली के झटकों की जो कि इसराइली मजालिम और इनके जालिम फौजियों ने किए थे, इनकी याद दिलाती हैं। कैद के दौरान तशद्दुद से होने वाली हलाकतें। मैंने इसके अलावा इसराइली फौजियों के जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनने वाले कई दर्जन अफराद से बातचीत की जिनमें से कई बिजली के झटकों और बार बार पिटाई का शिकार होते, अगरचा इनमें से अक्सर मुस्तकिल जख्मों का तोहफा लेकर जी रहे हैं اور ان کے جسم کے مختلف حصوں میں مستقل درد رہتا ہے، لیکن اس بات کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ان افراد کے ذہنی احساسات کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا۔